हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 10वां अध्याय 12वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। विश्वम वै ब्रह्म तन मात्रम संस्थितम विष्णु मायाया ईश्वरेण परिच्छिन्नम कालेन अव्यक्त मूर्तिना। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के निर्विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलग किया हुआ है। यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत ऑब्जेक्टिव अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। तात्पर्य, जैसा कि व्यास देव के समक्ष नारद पहले कह चुके हैं, भागवत 1:5:20 इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः, यह अव्यक्त जगत साक्षात भगवान है, किंतु यह भगवान से परे या भिन्न कुछ और ही प्रतीत होता है। यह इसलिए ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि काल द्वारा यह भगवान से पृथक किया गया है। यह टेप रिकॉर्ड द्वारा अंकित उस मनुष्य की वाणी जैसा है जो संप्रति अपनी वाणी से विलग किया हुआ है। संप्रति मतलब अभी। जिस तरह टेप अंकन टेप पर स्थित है, उसी तरह सारा भौतिक जगत भौतिक शक्ति पर स्थित है और काल के द्वारा पृथक प्रतीत होता है। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की वस्तुगत अभिव्यक्ति है और उनके निर्विशेष रूप को प्रदर्शित करती है, जो निर्विशेष दार्शनिकों द्वारा इतनी अधिक पूजित है। ओम अज्ञान तिब्रंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवीरान स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणीचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यहाँ पर प्रश्न पूछा था इससे पीछे विदुर जी ने, उन्होंने कहा कि हे ऋषि आप कृपा करके नित्य काल का वर्णन करें। अभी मैत्रेय जी जो हैं वो काल के बारे में समझा रहे हैं कि काल क्या चीज है। तो मैत्रेय ऋषि ने बोला कि जो काल है वो भगवान का एक रूप है, है ना, भगवान की एक शक्ति है काल। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, परास्य शक्तिर विविध है श्रूयते, भगवान की अनेक शक्तियां हैं। सो काल जो है वो भी भगवान की एक शक्ति है। और जैसे भगवद गीता में 5 चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है, कौन सी 5 चीज़ें हैं? भगवान, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ठीक है ना। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण काल के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान। जब जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, हजारों मुख, हजारों कान, हजारों हाथ, तो अर्जुन एकदम विचलित हो गया। अर्जुन ने बोला, आप कौन हो? मैंने इतना अद्भुत रूप पहले कभी देखा नहीं है, आप प्लीज बताएं आप कौन हैं, मैं तो आपको अपना सखा समझ रहा था। तो भगवान ने अर्जुन को बताया, कालोस्मी, मैं काल हूँ। तो अर्जुन ने पूछा, फिर आप काल हो, अच्छा तो आप क्या करने आए हो? आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर क्या करने आए हो? तो भगवान कृष्ण ने बोला कि लोके क्षय कृत, कि मैं प्रवृद्धा, लोक क्षय कृत प्रवृद्धा, कि मैं जितने लोग हैं उनका विनाश करने आया हूँ। और हम देख सकते हैं कि भगवान काल के रूप में हर चीज नष्ट कर देते हैं। कोई कितनी बढ़िया वस्तु हो, कितनी मजबूत पायदार वस्तु हो, समय के प्रभाव से सब नष्ट हो जाता है। तो वो जो समय है, जो हर एक जीव को, हर एक वस्तु को अपने नियंत्रण में रखे हुए है, वो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। और भगवद गीता में भगवान अन्यत्र भी कह रहे हैं कि कालः कलयताम अहम्, कि जो भी नियंत्रण करने वाली, जो भी नियंत्रक हैं, उन सब में से सबसे जो ताकतवर नियंत्रक कौन है? सबसे ताकतवर नियंत्रक काल है, सबसे ताकतवर नियंत्रक काल। और भगवान कह रहे हैं अहम, वह काल मैं हूँ। कई लोग तो, हरे कृष्णा, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान भी काल के अधीन है। देखो, कृष्णा आए, काल के अधीन हो गए, भगवान राम आए, काल के अधीन हो गए, है ना। काल कितना बलवान है, तो काल बलवान है, लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते कि काल कितना भी बलवान हो, वो हमेशा भगवान के अधीन रहेगा। भगवान कभी भी काल के अधीन नहीं रहते, है ना। तो अनेक कथाएं हैं, जब सीता माता का अपहरण हो गया था तो भगवान राम विलाप कर रहे थे। भगवान कह रहे थे, वो सीता कहाँ गई? तो पार्वती जी ने भी देखा तो उन्होंने भगवान शंकर को बोला, शिव जी को बोला, उन्होंने, आप इन्हीं की उपासना कर रहे हो, 24 घंटे आप राम 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 जप रहे हो, तो ये तो विलाप कर रहे हैं, देखो। तो भगवान जो राम को विलाप करते देखा, शिव जी ने भी देखा, लेकिन शिव जी को पता है कि लीला चल रही है, है ना। तो शिव जी ने कहा कि आप इसको अभी समझ नहीं पा रहे हो, आप तो ये लीला कर रहे हैं, वास्तव में दुखी नहीं है। सो भगवान सच्चिदानंद है, कभी भी परेशान नहीं होते। सीता देवी के विरह में विलाप करते देखकर कंफ्यूज हो गई दुर्गा देवी, और उन्होंने कहा मैं टेस्ट करूंगी तो जो पार्वती जी हैं, वो सीता माता का रूप बनाकर उनके सामने चली गई। वो जंगल में ढूंढ रहे थे, पत्तों से पूछ रहे थे तुमने देखा है सीता को, हाँ पशुओं से पूछ रहे थे तुमने देखा है सीता को। तो एकदम सीता देवी सामने आ गई, और मैं यहाँ प्रति में छुपी हुई थी। तो भगवान राम ने बोला उनको, पार्वती देवी को, माता आप यहाँ कैसे आ गए? सो बहुत शर्मिंदा हुई वो, और इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने वापस चैतन्य महाप्रभु के जो जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवद्वीप में, वहाँ वो गई तपस्या की, और जो नवद्वीप की जो रज है उन्होंने अपनी मांग में लगाई, और जहाँ पे वो रज मांग में लगाई तो ये मांग को सीमा कहते हैं, हाँ विभक्त कर देते हैं ना बालों को, तो वो स्थान का नाम पड़ गया सीमांत द्वीप, है ना, सीमांत द्वीप है ना वहाँ पर। तो जब पार्वती जी वापस गई बहुत शर्मिंदा थी, तो उन्होंने बोला गलती हो गई। तो शिव जी ने बोला मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, आपने मेरी माता का रूप धारण कर लिया था। तो उन्होंने फिर शरीर छोड़ा अपना, दोबारा जन्म लिया, तो शिव जी ने उनको एक्सेप्ट किया, है ना। ऐसे ही हम देखते हैं लोग बोलते हैं कि देखो वो जरा नाम के व्याध ने तीर मारा और उससे भगवान की जो है देहांत हो गया भगवान का। सो लोग ये नहीं समझ पाते कि भगवान, सो प्रश्न ये भी उठ सकता है कि मतलब ऐसी लीलाओं से इतने सारे क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, विवाद खड़े हो रहे हैं। कभी भगवान जो है सीता मैया का त्याग कर दिया, कभी आग में अग्नि परीक्षा ले ली, हाँ व्याद के बाण से उन्होंने दिखाया कि देखो देहांत हो गया। तो भगवान ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, ऐसे लोग भ्रमित हो रहे हैं ऐसी चीज़ों से, क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, पीछे किसी ने केस भी कर दिया था अभी साल छः महीने की पहले की बात है, केस कर दिया कि सीता मैया को वनवास क्यों दिया गया था, केस कर दिया। न्यायाधीश ने पूछा भाई किसको, किस पे केस कर दिया, किसको बुलाए कटघरे में, तो केस रिजेक्ट कर दिया। तो जब भी बात उठती है तो लोग यही बोलते हैं कि देखो भगवान जो राम है तुम्हारे, हाँ वो कितने अत्याचारी थे, किसी की कहने में आके सीता देवी का त्याग कर दिया, अग्नि परीक्षा ली, वो तो सीता देवी महान है कि कुछ नहीं बोली। अरे वो सीता देवी महान इसलिए है कि भगवान राम की संगिनी है वो, अलग से कुछ वजूद थोड़ा ना है। लोग ये नहीं समझ पाते कि भगवान चिन्मय है और भगवान से संबंधित हर वस्तु चिन्मय है, हर वस्तु दिव्य है, भौतिक प्रभाव से परे है, भगवान भी काल के प्रभाव में नहीं आते, और जो तदीय वस्तु है, जो भगवान की वस्तु है, जो भगवान से संबंधित है, वो भी कभी काल के प्रभाव में नहीं आती। ये जो काल है ये काल सिर्फ भौतिक जगत में ही है, ये काल आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ना भूतकाल है ना भविष्य काल है, वर्तमान काल ही चले जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि एक क्षण बीत गया, वही क्षण चले जा रहा है, पहले भी वही क्षण चल रहा था, अभी भी वही क्षण चले जा रहा है। वहां पर आप बोलो ऐसा कैसे, फिर समय कैसे बीतता है? तो इसलिए बताया जाता है कि अचिंत्य है, समझा नहीं जा सकता। अभी हम अपनी समझ से जो हमारी सीमित सोच है, जो सीमित दिमाग है, सीमित इंद्रियां हैं, उससे अभी हम इसको नहीं समझ सकते। तो कैसे समझ सकते हैं? देख के समझ सकते हैं। जब देखेंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएंगे कि हाँ अच्छा ऐसे होता है, ओके ठीक है फाइन, है ना। तो देखेंगे कैसे? जब हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान ने बनाया है ये सुविधा प्रदान करने के लिए कि हम इस भौतिक जगत से वापस भगवान के धाम चले जाएं। और उसकी जो प्रक्रिया है, भौतिक जगत को चलाने की प्रक्रिया है, वो काल द्वारा निर्धारित होती है। इसीलिए काल को बहुत बलवान माना जाता है। जब भगवान सृष्टि करते हैं तो भगवान के शरीर से महत्तत्व प्रकट होता है। महत्तत्व होता है, सारी भौतिक जो पदार्थ हैं, भौतिक तत्व हैं, वो एक बीज के रूप में स्थित होते हैं महत्तत्व में, लेकिन वो निष्क्रिय है। उसमें कुछ भी हरकत, कुछ भी क्रिया नहीं होती उसके अंदर। तो भगवान उसमें काल निवेशित कर देते हैं। जब काल महत्तत्व में, महत्तत्व को स्पर्श करता है, तो उसमें जो सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना। उसके बाद बार बार सृष्टि होती रहती है, भूत्वा भूत्वा प्रलय होते, बार बार सृष्टि होती रहती है और बार बार प्रलय होती रहती है। और भागवतम में यह भी बताया गया है कि सृष्टि 9 तरह की है, प्रलय 3 तरह की है ना। तो ये सब जो आगे आप इसका वर्णन पढ़ोगे आप लोग, तो ये सारी जो गतिविधियां हैं ये काल के द्वारा नियंत्रित है। और काल जो है वो भगवान की एक अभिव्यक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति है तो क्या भगवान से अभिन्न है? तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है शक्ति शक्ति मतयोर अभेदा, कि जो शक्ति है और शक्तिमान दोनों में फर्क नहीं है ना। दोनों एक ही हैं, अलग भी हैं और एक भी हैं। तो वो पहले चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले यही विवाद चल रहा था। दो तरह के लोग होते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान में जुड़े हैं और जो आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं जुड़े। जो आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं जुड़े वो तो पशु के समान है, बात खत्म होगी, साइड पे कर दिया उनको। जो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े भी हुए हैं उनमें भी दो वर्ग थे उनमें भी। एक वर्ग ये कह रहा था कि भगवान मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारे वर्ग थे, तो एक ये कह रहा था कि भगवान और भगवान की शक्ति अलग है ना। और एक वर्ग कह रहा था कि भगवान और भगवान की शक्ति अलग नहीं है ना। तो कुछ तो जो कह रहे थे कि भगवान और भगवान की शक्ति अलग है, तो उनका ये विचार था कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो कुछ बदलाव आ जाता है। जब सृष्टि होती है तो कुछ बदलाव आ जाता है भगवान में, उसको विवर्तवाद कहते हैं। और कुछ लोग कहते थे कि भगवान और भगवान अभिन्न है, भगवान की शक्ति अभिन्न है, कुछ जो है भगवान में बदलाव नहीं आता। तो लेकिन अलग दिख भी रहा है, भगवान दिख नहीं रहे, चीजें चल रही हैं, तो कैसे समझें? तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो है वो समझाया। तो उन्होंने बोला देखो जो शक्तियां हैं वो भगवान से भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं, है ना। अब सारी बात स्पष्ट हो गई। जो भौतिक सृष्टि है वो काल के नियंत्रण में चल रही है। और भगवान कह भी रहे हैं भगवत गीता में, हाँ, मयाततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि मैं अव्यक्त रहकर बिना दिखाई दिए इस पूरे भौतिक सृष्टि का संचालन कर रहा हूँ। और फिर भगवान कह रहे हैं काल उसमें, कि मैं काल हूँ। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान काल के रूप में, समय के रूप में भगवान जो है ये पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। और वो जो काल है वो भगवान का इम्पर्सनल निर्विशेष रूप है भगवान का, है ना। और क्योंकि जो काल है वो भगवान की शक्ति है, इसीलिए काल कभी भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता। प्रभावित जो है हमेशा भगवान काल को प्रभावित करेंगे। काल भगवान के डर की वजह से कार्य करता है। काल का प्रभाव केवल और केवल भौतिक जीवों पर ही चलता है, भौतिक सृष्टि पर चलता है। भौतिक सृष्टि के बाहर कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, तो जैसा हम बात कर रहे थे कि काल जो है उस सृष्टि का संचालन कर रहा है ये अवसर देने के लिए कि हम इस भौतिक जगत को छोड़ के भगवत धाम चले जाएं, है ना। तो ये भी एक सेवा है, हाँ, ये भी एक अवसर है। तो जिस दौरान ये सृष्टि चल रही है वो हमें अवसर मिला हुआ है कि निकल जाओ, अगर आप निकल सकते हो बाहर इस जगत से। जैसे सपोज आपको लॉटरी निकल गई आपकी, हाँ, आपने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, निकल गई लॉटरी आपकी। तो आपको बोला देखो भैया 31 दिसंबर से पहले आके ले जाना। जैसे अब मोदी बोल रहा है ना 30 दिसंबर तक 500 हजार के नोट बदल लेना। अगर सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 1 जनवरी को जाओगे तो क्या बैंक बदल देगा आपको नोट? वो अवसर खो गया। आप चाहे 19 दिसंबर को चले जाओ, चाहे 20 को चले जाओ, 21, 22, कभी भी चले जाओ, 30 से पहले जाओगे तो काम हो जाएगा, 30 के बाद जाओगे तो नुकसान है। आपने लॉटरी की टिकट आपकी 31 दिसंबर तक की तारीख थी, आप 31 दिसंबर तक उससे पहले कभी भी चले जाओ तो ठीक है, उसके बाद जाओगे तो फिर बात नहीं बनेगी। इसी तरह से ये जो शरीर मिला है ये शरीर आपकी लॉटरी की टिकट है। और भगवान काल के रूप में कह रहे हैं कि देखो आप, आपकी तारीख तय है कि नहीं तय है? तारीख तय है ना। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, पता नहीं है अभी हमें। तो तारीख तय है कि इस तारीख को आपकी लॉटरी की टिकट कैश होनी है। अगर हमने उससे पहले अगर वो टिकट कैश कर लिया लॉटरी का, उससे पहले हम भगवान की अच्छे से भक्ति करने लग गए तो जीवन सफल हो गया, नहीं तो वो टिकट बेकार हो जाएगी। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे ये उसी तरह है कि आपको बहुत अच्छी एक सरकारी नौकरी मिल गई, है ना, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, और आपको कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। और सपोज आपने जिम्मेदारियां पूरी नहीं की तो क्या होगा? नौकरी से निकाल देंगे। आजकल नहीं निकालते हैं, लेकिन अगर हम असूलन देखें तो नौकरी से निकाल देते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार जिम्मेदारियां निर्वाह नहीं किया नौकरी से निकाल देंगे, उसी प्रकार अगर ये मनुष्य शरीर मिलने पर जो इसकी जो सुविधा है, जो दायित्व है, अगर उसका निर्वाह नहीं किया तो मनुष्य शरीर छीन लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? निम्न योनियों में जाना पड़ेगा। और भगवान कह भी रहे हैं भगवद गीता में, है ना, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। आप जिस तरह के गुणों का जिस तरह के आप वातावरण में, परिवेश में जीते हो, जिस तरह का आचरण करते हो, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, उससे आपका निर्धारण हो जाएगा कि आप ऊपर के लोकों में जा रहे हो, यहीं रह रहे हो, या नीचे के लोकों में जा रहे हो। कारणम गुण संगस्या, जिस गुण का आप अनुशीलन कर रहे हो, जिस गुण को आप बढ़ा रहे हो, उससे ये निर्धारित होगा कि आपकी गति क्या होने वाली। सो प्रभुपाद भागवतम में, भगवत गीता में अनेक जगह पर बार बार प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये जो लॉटरी का टिकट है, जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि इस भौतिक जगत से बाहर निकल जाओ, है ना। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, परीक्षित महाराज 7 दिन में उनको समझ में आ गया, उन्होंने भागवतम सुनी 7 दिन और भौतिक जगत से बाहर निकल गए, है ना। उसी प्रकार एक राजा थे, राजा खटवांग, वो देवताओं के लिए युद्ध कर रहे थे, देवताओं की उन्होंने हेल्प की, तो देवताओं ने उनसे पूछा युद्ध खत्म होने के बाद कि बताओ हम आपके लिए क्या करें। तो उन्होंने ये बोला कि मुझे ये बता दो मेरी मौत कब होने वाली है। तो उन्होंने बोला भैया एक घड़ी रह गई आपकी मौत में। तो खटवांग महाराज ने सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों में ध्यान लगाया और उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। लेकिन हमें ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है, है ना। और दूसरी बात यह है कि हमारा मन इतना मजबूत नहीं है। हम माला भी करने बैठते हैं तो दशों दिशाओं में हमारा दिमाग दौड़ता है ना। और जितना हम कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की, उतना ही मन और ज्यादा दौड़ता है। ऐसी ऐसी बातें याद आ जाती हैं, जो कभी ना सोते ना जागते कभी याद नहीं आएंगी, जब के टाइम पे याद आ जाएंगी। 50 साल पहले उसने मुझे ये कहा था, ऐसा हो गया था, 20 साल पहले वो बात हो गई थी, सारी चीजें उसी टाइम याद आती हैं, है ना। तो मन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, है ना। तो ऐसे परिवेश में, ऐसे वातावरण में हम अगर गंभीरता भी नहीं दिखाएंगे, चलो मन पे कंट्रोल नहीं है, कम से कम गंभीरता तो दिखा लो। कम से कम जो 4 नियम हैं उसका पालन कर लो, सुबह जल्दी उठ जाओ, आरती कर लो, जैसे तैसे कैसे भी करके 16 माला का जप कर लो, कम से कम इतना तो कर ही लो, नहीं तो इतना करने। तो एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, उनका अभी तो तिरोधान हो गया, उनका 2003 में शायद हुआ था तिरोधान। तो वो प्रभुपाद से मिले एक बार, तो प्रभुपाद से उन्होंने बोला, मैनेजमेंट संभालते थे वो, जैसे अभी गोपाल कृष्ण महाराज है, कितना मैनेजमेंट में जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, पूरा वर्ल्ड में ट्रैवल करते थे और मैनेजमेंट देखते थे, लीगल मैटर्स देखते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद मेरा दिमाग तो 24 घंटे इसी में लगा रहता है, तो माला करता हूँ तो भी दिमाग में यही चलता है। तो भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कले वरम। तो अगर मृत्यु के समय मैं भगवान का ध्यान नहीं कर पाया तो क्या होगा फिर मेरे साथ में। तो प्रभुपाद ने बोला, आप टेंशन मत लो, आप सेवा करो, मेरी कृपा से आप, जब आपका शरीर छूटेगा, आप भगवान के ध्यान में लगे मिलोगे, आपका ऑटोमेटिकली ऐसा अवसर बन जाएगा कि आप भगवान का स्मरण हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हुआ कि तमाल कृष्ण महाराज मायापुर से कलकत्ता जा रहे थे फ्लाइट पकड़ने के लिए, रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें वो माला जप कर रहे थे, है ना। तो अगर हम प्रभुपाद की कृपा पर, गुरु की कृपा पर अगर आश्रित रहेंगे और अच्छे से सेवा में जुड़ेंगे अगर हम, तो अगर बाय चांस हमारा मन नहीं भी लग रहा जप में, लेकिन हम अच्छे से सेवा में लगे हुए हैं और प्रभुपाद और गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो गुरु और प्रभुपाद की कृपा से ऐसा अवश्य होगा कि शरीर छोड़ते समय हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे, है ना। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि हम बहुत ही कमजोर हैं काल का सामना करने की और अपने मन से लड़ने की ताकत नहीं है हम में। तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति का संग लेना पड़ेगा जिसकी जो समर्थ है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि दो व्यक्ति हैं आसपास बैठे हुए हैं, दोनों के हाथ पैर मुंह सब बंधे हुए हैं उसे, तो क्या दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं? कितना ही चाहे भाई क्यों ना हो जुड़वा, हेल्प कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी बंधा हुआ है और वो भी बंधा हुआ है। तो जो बंधा हुआ व्यक्ति है उसकी हेल्प कौन कर सकता है? बंधा हुआ व्यक्ति की हेल्प वो कर सकता है जिसके हाथ पैर खुले हुए हैं, है ना। इसी प्रकार हम लोग सब काल के अधीन है। सो एक काल के अधीन व्यक्ति दूसरे काल के अधीन व्यक्ति की हेल्प नहीं कर सकता, है ना। भागवतम में लिखा हुआ है कि ये मतलब मरे हुए सिपाही हैं, मरा हुआ सिपाही किसकी हेल्प करेगा, फॉलिबल सोल्जर्स। हाँ, ये मरे हुए सिपाही हैं, पहले से ही मरे हुए हैं, ये किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये तो खुद ही गिरे पड़े हैं। सो अगर हेल्प कोई कर सकता है काल के प्रभाव से परे जाने के लिए, तो वो व्यक्ति हेल्प कर सकता है जो काल के प्रभाव में नहीं है, जिसके हाथ पैर खुले हुए हैं। जिसके हाथ खुले हैं वही तो हमारी रस्सी की गांठ खोलेगा, दूसरा व्यक्ति कैसे खोल सकता है ना। तो हमें ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेनी है जो काल के प्रभाव में नहीं है, और वो कौन है? वो गुरु है। गुरु का अर्थ है जो गुरु परंपरा का प्रतिनिधि है। और गुरु परंपरा का प्रतिनिधि का मतलब क्या है कि वो कृष्ण का प्रतिनिधि है, पूरी गुरु परंपरा कृष्ण की प्रतिनिधि है। गुरु परंपरा में आने वाला हर एक व्यक्ति कृष्ण का और पूर्ववर्ती आचार्यों का प्रतिनिधि है। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जो है वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, इन सब का और नारद जी, व्यास देव जी, इन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना। और इन सब का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ वे भगवान कृष्ण का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और क्योंकि वो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, और भगवान कृष्ण काल के प्रभाव में नहीं है, इसीलिए पूरी गुरु परंपरा और प्रभुपाद का प्रतिनिधित्व करने वाले जो आगे गुरु हैं वो भी काल के प्रभाव में नहीं है। तो अगर हम गुरु और प्रभुपाद की अगर हम शरण लेते हैं, उनसे अगर हम सहायता लेते हैं, तो आज जो हम काल के प्रभाव में हैं, हम काल के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, और इतना मुक्त हो सकते हैं कि हम दूसरों को भी मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आमार आज्ञा गुरु है तारे देश, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा है गुरु है तारे देश, मेरी आज्ञा है आप गुरु बनो। गुरु कैसे बनोगे? काल के प्रभाव से मुक्त होकर। जब आप स्वयं काल के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे, जब आप स्वयं अपने बंधन से मुक्त हो जाओगे, तब आप जाकर आगे किसी और की सहायता कर सकते हो, है ना। तो ये पूरी इस्कॉन संस्था काल के प्रभाव से बंधन से मुक्त होने के लिए है। हम भगवान के निर्विशेष प्रतिनिधि से हमारा कोई लगाव नहीं है। हम सम्मान करते हैं काल का, लेकिन हम काल के प्रभाव में नहीं रहना चाहते। हम भगवान के सुंदर श्याम सुंदर रूप, साकार रूप के अधीन रहना चाहते हैं। वो अधीन, भगवान के साकार रूप के अधीन रहने के लिए हमें जो भगवान का निराकार रूप है, निर्विशेष रूप है काल समय, हमें उसके प्रभाव से बाहर निकलने की चेष्टा करनी होगी। और वो चेष्टा जो है वो दिखावे के लिए नहीं, वो चेष्टा हमें पूरे मन के साथ करनी होगी। क्योंकि अगर हम दिखावे के लिए करेंगे तो हम किसी और को धोखा नहीं देंगे। किसको धोखा देंगे? हम अपने आप को ही धोखा देंगे, है ना। दूसरे लोग बोले हो कितने अच्छे भक्त हैं, हमारे मन में भोग है, किसको नुकसान हुआ? हमें नुकसान हुआ। दूसरे लोग जो है, जो काल के प्रभाव से मुक्त होगा वही भगवत धाम जाएगा, जो नहीं है वो चाहे कितना ही अच्छा भक्त है यहीं पर मिलेगा आपको। आप ऊपर से देख लेना खिड़की खोल के, यहीं पर मिलेगा, है ना। तो ऐसा मत सोचो कि लाखों भक्त बना दिए, करोड़ों मंदिर बना दिए तो भगवत धाम जाना निश्चित है। नहीं, जब तक हम काल के प्रभाव से मुक्त नहीं होंगे, जब तक हमारे मन में भोग की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी, तब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो ये आवश्यक है कि हम पूरा प्रयास करें इस काल के प्रभाव से, जो भगवान का निराकार रूप है, उससे हटकर हम भगवान के। तो आप कह सकते हो कि आखिर काल भी तो भगवान का ही रूप है, भगवान की शक्ति है, हम भगवान की शक्ति को आखिर क्यों पूजा नहीं करें? नहीं, भगवान की शक्ति की पूजा क्यों नहीं करें? तो ये गोपियों के आचरण से हम सीख सकते हैं। जब भगवान रासलीला कर रहे थे गोपियों के साथ, तो अंतर्ध्यान हो गए थे बीच में, तो सारे गोपियां भगवान को ढूंढ रही थी। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? चतुर्भुज रूप बना लिया, और चतुर्भुज रूप बना के रास्ते में खड़े हो गए। तो सारी गोपियां आई, सारी गोपियों ने देखा हो विष्णु नारायण खड़े हैं, गई फौरन प्रणाम किया उनको, प्रणाम किया और उनसे क्या पूछा? आपने कृष्ण को देखा है? नहीं। तो जिस तरह तो गोपियां दिखा रही हैं अपने आचरण के द्वारा कि हम भगवान की सभी शक्तियों को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है? क्या आपने भगवान कृष्ण को देखा है? क्या आप हमारी मदद कर सकते हो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, है ना। इसी प्रकार हम काल को प्रणाम करते हैं, लेकिन हम काल की पूजा नहीं करेंगे, हम पूजा केवल कृष्ण की करेंगे। काल हमारे सामने आएगा तो हम उससे पूछेंगे, जरा बताना भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे जाऊं? तो अपने मन में हमने इस भाव को विकसित करना है, हमने भगवान के जो अन्य विभूतियां हैं, अन्य शक्तियां हैं, हम उनकी अलग से पूजा नहीं करना चाहते। हम अपना मन केंद्रित करना चाहते हैं भगवान के साकार सविशेष और अत्यंत सुंदर रूप के प्रति हम अपना अनुराग उत्पन्न करना चाहते हैं, और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अगर हम ये करेंगे, अगर हम ये प्रयास करेंगे, तो ऐसा मत समझ लेना कि केवल अपने प्रयास से सफल हो जाएंगे। वो प्रयास के साथ साथ हमें आश्रित रहना पड़ेगा प्रभुपाद और गुरु की कृपा पर। अगर केवल प्रयास किया तो भी बात नहीं बनेगी, प्रयास करना है और साथ में गुरु की प्रभुपाद की कृपा पर भी आश्रित रहना है। अगर हम ये दोनों चीजें साथ में चलाएंगे तो हम प्रभुपाद की गुरु की कृपा से काल के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, हाँ, और भगवत धाम जाकर भगवान के जो सविशेष रूप है, भगवान का साकार रूप है, उसकी हम सीधे सेवा में संलग्न हो पाएंगे। हरे कृष्णा।